बहुत अधिक दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने वाले और जीवन की अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले गिने चुने लोग होते हैं। जन्म लेकर माता पिता, शिक्षक और वातावरण से प्रशिक्षण लेने वाले और आजीविका का साधन करने वाले, परिवार की वृद्धि करने वाले और चिंताओं से ग्रस्त रहने वाले और मनोरंजन में पड़े रहने वाले करोड़ों मनुष्य जन्म लेकर मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं कि मनुष्य जीवन मनोरंजन के लिए नहीं है। इस जीवन की एक एक घड़ी अनमोल है और यह जीवन एक ऐसा अवसर है कि यदि इसका सदुपयोग कर लिया तो सारा भविष्य अशांति से मुक्त हो सकता है। दुनिया भर का पुरुषार्थ तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन शांति का सही पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में संभव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इन कार्यों को निपटाने के बाद फिर अपने जीवन का कुछ विशेष सदुपयोग करेंगे, लेकिन कई बार उन कार्यों के पहले खुद निपट जाते हैं। भास्कर जी ने एक बार भोपाल में कहा था कि मौत निश्चित है और अनिश्चित भी। निश्चित इस दृष्टि से कि किसी को पता नहीं है कब मृत्यु हो जाएगी, और ज्ञानी जन तो मृत्यु को एक अलग ही वस्तु समझते हैं। डरने का तो प्रश्न ही नहीं है, मृत्यु का स्वागत करके उसको पछाड़ देते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य श्री कुंडलपुर में एक बार कह चुके हैं कि व्हाट इज डेथ, कहने का ढंग देखिए आप, व्हाट इज डेथ यानी मौत क्या चीज है। इट इज जस्ट ए चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, सिर्फ पता और वस्त्र बदल जाने का नाम मृत्यु है। और इतनी मामूली चीज, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना मामूली बात नहीं है। मन इतना चंचल है कि सब कुछ जानते हुए और दूसरों की दुर्दशा देखते हुए भी जहां अपने कल्याण की बात आती है, विषय कषायों से हटने की बात आती है, तब गुमराह कर देता है। मन कहता है कि भाई अभी थोड़ा और रुक जाओ, जल्दी क्या है, और बस उसी में सब काम बिगड़ जाता है। इस जीवन की एक एक घड़ी इतनी कीमती है कि इंद्र भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। इंद्र अगर अपना पूरा वैभव अंतर मुहूर्त के लिए किसी को दे दे कि भाई उतने समय को मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, तो ऐसा लेन देन का हिसाब नहीं हो सकता। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। दिगंबरा हि जायन्ते म्रियन्ते पि दिगंबरा, ते सुष्ठु दुर्लभा लोके ये मध्ये पि दिगंबरा। जन्म के समय दिगंबर, मरते समय भी दिगंबर, लेकिन फिर भी संसार में वे लोग गिने चुने हैं जो बीच में दिगंबर रहते हैं। पहले पंडित भूरामल जी थे, बाल ब्रह्मचारी थे और संस्कृत प्रेमी थे, जैन साहित्य में विशेष रुचि थी। पंडित जी ने जो घटना सुनाई कि किसी ब्राह्मण विद्वान ने तिरस्कार कर दिया जब वो पढ़ने गए और ऐसे शब्द कह दिए कि मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें, तुम्हारे जैनियों के यहां ऐसा कौन सा साहित्य है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। ठेस लगी कि जो वीतराग भगवान द्वारा प्ररूपित पवित्र धर्म है उसके विषय में लोगों की ऐसी धारणा है कि तुम्हारे यहां क्या है। ब्रह्मचारी थे, चोटीधारी थे, चोटी में गठान लगाई कि यदि ऐसा साहित्य हमारे यहां नहीं है आपकी दृष्टि में, तो ऐसा साहित्य तैयार हो जाएगा। और वास्तव में संकल्प पूर्ण हुआ और उन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की कि जिसको पढ़कर बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से उनके साहित्य में देखा जाता है और भाषा भी बड़ी सरस है। कठिन काव्य की रचना करते हुए भी भाषा को मधुर बनाए रखना ये बड़ी प्रतिभा वाली बात है। तो साहित्य सेवा बहुत अधिक मात्रा में की और आचार्य श्री के मुख से हमने सुना था कि जब समाधि पूरी हो चुकी तब उनका बहुत सा साहित्य मंदिरों की अलमारियों में हस्तलिखित प्रतियों के रूप में प्राप्त हुआ, यानी जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने किसी से ये भी नहीं कहा कि हमने ये लिखा है। आज का कवि दो पंक्ति लिखने के बाद भी सुनाए बिना छटपटाता है और उन्होंने ऐसे अपार साहित्य की रचना की लेकिन फिर भी मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं की। वास्तव में साधुता यह है कि जिसके अंदर लोक प्रशंसा की कोई कामना न हो। और चूंकि आज संलेखना का प्रकरण है, ये तो सब उन आचार्य महाराज के गुण थे, उनकी प्रतिभा थी। अब संलेखना का संबंध जो है वैराग्य और जीवन की पवित्रता से जुड़ता है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है और जिसका हृदय पवित्र नहीं है, वो संलेखना के सपने देख सकता है, लेकिन संलेखना जैसी कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकता। संलेखना को जीवन की परीक्षा कहा गया है, कसौटी। जीवन भर साधु ने साधना की, बहुत कठिन साधना की, पर अंतिम परीक्षा यदि अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली जाए तो वो भव सफल हो जाता है। भगवती आराधना ग्रंथ में एक गाथा आती है जो सबके हृदय में छा जानी चाहिए। एकम भव गहणी समाहि मरणेण जो मदो जीवो नहु सो हिंड दिबोसो सत्तठ भवे पमोत्तुण। एक पर्याय में जिसने समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को अंगीकार किया, वह संसार में अधिक नहीं भटकता, 7 अथवा 8 भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और वह मनुष्य पर्याय आज हम आप सबको प्राप्त हुई है, उन्हें भी प्राप्त हुई थी जिनका आज हम स्मरण कर रहे हैं। बड़े ज्ञानी थे और आचार्य संघों में भी स्वाध्याय के समय उपस्थित रहते थे, प्रवचन सार आदि ग्रंथों की टीकाएं लगाया करते थे। आचार्य वीर सागर महाराज जी से भी बहुत निकट रह चुके और शिव सागर महाराज से तो उन्होंने मुनि दीक्षा ही ले ली थी, तो काफी स्वाध्याय का क्रम चलता रहा जीवन में। और बनारस की बात है, ये घटना खुरई में आचार्य महाराज ने सुनाई थी कि बनारस में एक दिन अकेले बैठकर प्रवचन सार के पृष्ठ पलटा रहे थे और जब चरित्र चूलिका नाम का एक प्रकरण है, 3रा प्रकरण प्रवचन सार ग्रंथ का जो 3रा अध्याय है, उसका मंगलाचरण उन्होंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कि समय रुक गया, घड़ी के कांटे थम गए, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ऐसा लगा जैसे सामने साक्षात आचार्य कुंदकुंद देव मुझे ही कुछ कह रहे हैं। हमने आचार्य महाराज से एक बार पूछा था कि महाराज, ज्ञानार्णव पढ़ा हमने, आपकी अनुमति से पढ़ा, और हमें ऐसा लगा कि ये ग्रंथ शायद शुभचंद्र महाराज ने हमारे ही लिए लिखा। तो फिर आचार्य महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कि कल्याण तभी होता है जब स्वाध्याय करने वाले को ऐसा लगता है। तो कुंदकुंद महाराज उनसे कह रहे थे, ब्रह्मचारी भूरामल से, चरित्र चूलिका के मंगलाचरण में, पड़ी वज्जदु सामण्डम जदि इच्छदि दुख परिमोखम। सामण्डम साधु पने को अंगीकार कर लो अगर दुखों से छूटने की इच्छा हो तो। हिल गए अंदर से यद्यपि कई बार इस गाथा को वो पढ़ा चुके थे, लेकिन पढ़ाना अलग चीज है और पढ़ना अलग चीज है। ऐसा लगता है कि पढ़ाना कठिन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि शास्त्र की जो पंक्तियां हैं वो तो अपना अर्थ कहती है, लेकिन उन पंक्तियों के बीच में जो अर्थ रहता है ना, उसको पकड़ना मामूली बात नहीं है। वो अर्थ उनकी पकड़ में आ गया और अंतःकरण प्रेरित हो गया कि नहीं, इस जीवन में मुझे अवश्य साधु पने को अंगीकार करना है, साधु वेश को नहीं। समझना अंतर। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने क्या कहा, सामण्यम परिवज्जतु, साधु पने को अंगीकार कर आदेश दिया, और वो आदेश शिष्य को ही आदेश के रूप में सुनाई पड़ता है। बाकी तो जितने श्रोता होते हैं उनको लगता है कि भाई ये ठीक है, चल रहा है सब कार्यक्रम, उनका जीवन पलट गया। पहले क्षुल्लक अवस्था धारण की, फिर एलक हुए, उनका नाम उस समय ज्ञान भूषण था, और उसके बाद आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य, सबसे पहली मुनि दीक्षा आचार्य शिव सागर महाराज ने ज्ञान भूषण एलक जी को दी, ज्ञान सागर नाम रखा, मुनि ज्ञान सागर। और ज्ञान के सागर तो थे, फिर आगे की बहुत लंबी कथा है, प्रकरण समाधि मरण का है। तो अपने जीवन की उस पवित्र यात्रा को पूर्ण करते हुए जब हृदय ने कहा कि अब अधिक जीवन शेष नहीं है, तब उनको गुरुओं की वह अनुभव पूर्ण बात ख्याल आ गई, आदि व्याधि और उपाधि से जब तक मन नहीं हटता तब तक समाधि हो नहीं सकती। आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा, और उपाधि का अर्थ होता है कषायिक पीड़ा, कषाय जनित, जो टाइटल्स लग जाते हैं ना, कई टाइटल्स मनुष्य जीवन भर प्राप्त कर लेता है लेकिन मरते समय सब छोड़ करके चुपचाप चला जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता कि वो कहां चला गया। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, लेकिन सारी उपाधियां यहीं छूट जाती है। और संलेखना को धारण करने वाला वह वीर सब उपाधियों को पहले ही तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है। ऐसा विचार करके उन्होंने एकमात्र उपाधि जो उनके पास थी, आचार्य पद, उसका त्याग कर दिया। 22 नवंबर 1972 मगसिर कृष्णा दूज की तिथि को भरी भीड़ में अपने शिष्य बाल ब्रह्मचारी मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य के आसन पर बैठा ला और स्वयं नीचे आ गए, और आचार्य पद की दीक्षा संपन्न करने के बाद ये सब प्रक्रिया हुई। वहां सारी सभा अश्रुपूर्ण हो गई, आंखें भर गई सबकी कि ये माने मृदुता की मिसाल है। गुरु होकर के भी जिसने एक ऐसे शिष्य को पढ़ाया जो हिंदी संस्कृत तो क्या माने यहां काम चलाने लायक बोलना भी नहीं जानता था, टूटी फूटी जिसकी भाषा थी, ऐसे ब्रह्मचारी विद्याधर को जिन्होंने क ख ग घ ऐसे अक्षर हाथ से लिख लिख करके पढ़ाया, माने सब कुछ जिसने दे दिया, इतने महान गुरु ने, उनको अंत में अपना जीवन उद्धारक बना लिया, कैसी अद्भुत घटना है। और फिर नमोस्तु किया, जबकि नमोस्तु छोटे करते हैं और बड़े प्रति नमोस्तु करते हैं। इन्हें नमोस्तु किया और कहा, हे आचार्य परमेष्ठिन, अब मेरे निर्यापक आचार्य बन जाइए और कृपा करके मेरी मरण विधि को अच्छी तरह संपन्न करिए, अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह कीजिए माने करुणा करिए। एक गुरु अपने शिष्य से ऐसा कह रहा है, करुणा करिए। ये उनके जीवन की एक कषाय संलेखना की चर्चा हो गई। फिर कषाय संलेखना आगे बढ़ी, काय संलेखना भी बढ़ी। संलेखना दो प्रकार की होती है, एक शरीर संबंधी और एक भाव संबंधी। तो भावों की संलेखना तो वहां हो गई जहां अहंकार उनने विसर्जित कर दिया, अपना पद दे दिया। और फिर इन्होंने भी ऐसी सेवा की कि वो भी अपने आप में मिसाल है। पंडित जी ने कहा ना कि 10 लाख की संपत्ति प्राप्त करने वाला पुत्र भी पिता की वह सेवा नहीं कर सकता जो हमारे पिता ने हमारे दादाजी की सेवा की। फिर अंत में खूब तकलीफ होती होगी, शरीर भी रुग्ण है और बहुत ज्यादा जीर्ण अवस्था है, झुर्रियां हैं, गिन नहीं सकता कोई इतनी झुर्रियां, और हड्डी पसली, नसें और चमड़ी, इतनी दशा जर्जर है शरीर की। तो फिर बात महाराज जी को भी जमी कि सिर के नीचे अगर कुछ रख लिया जाए सिराना तो ठीक है। उन्होंने गुरु जी से अनुमति मांगी कि महाराज कुछ सिर के नीचे। तो महाराज ने देखिए संलेखना धारण करते हुए भी संलेखना की विधि अपने शिष्य को सिखाई है। उन्होंने कहा कि तकिया ले आओ जाकर। बात बड़ी विचित्र है लेकिन उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि समाधि मरण के लिए सुख सुविधाओं का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ये भाषा है कहने की, मां भी बच्चों से इस प्रकार की भाषा में बोलती है। और गुरु महाराज ने शिष्य से कह दिया कि तकिया ले आओ, तो वह निष्परिग्रही साधु तकिया कहां से ले आए? लेकिन भाव समझ में आ गया कि महाराज कोई सुविधा नहीं चाहते।
अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन,
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन,
उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन,
उपाध्याय को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन,
इनके नमन से
इनकी ही भक्त भक्ति में हो मेरे मन वच तन, नमो अर्हन्तारणम् नमो सिद्धारणम् नमो आयिर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय, जिनवाणी माता की जय।